نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا جانتے ہیں عمر بن جموح کے بارے میں؟ سوچئے ذرا، کیونکہ کبھی کبھی کسی کی بس ایک بات، صرف ایک بات کافی ہوتی اس کو بہت بڑا نام دینے کے لیے. جی، یہ لنگڑے تھے اور ان کا وہ کال کہ میں جنت میں لنگڑا کے جانا چاہتا ہوں. ہم سب کے لیے بہت ساری حجتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمام کرتا ہے، یہ مختلف لوگوں کے تذکرے کرنے، سننے اور اس کو پڑھنے کے بعد. تو آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان کی زندگی کی کتاب دیکھتے ہیں اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اسی چیز پہ لے کر جو کبھی کبھی لوگوں کی مجبوری بن چکی ہوتی ہے، ویک پوائنٹ، یا اپنے ویک پوائنٹ کو اپنا اسٹرانگ پوائنٹ بناتے تھے. اور میں خاص طور پہ اس کو اس سوچ کے ساتھ پڑھوں گی کہ اللہ ہمیں کبھی اتنا مجبور نہ کرنا، اتنا ہینڈی کیپ نہ کرنا کہ ہم نیکیوں سے پیچھے رہ جائیں، کیونکہ اصل میں سوچ ہوتی ہے. ورنہ تو آپ عبداللہ بن عمر مکتوم کے بارے میں جان لے تو نہ بھی نہ تھے، اور ان کے بارے میں بھی ہم جاننے لگے ہیں تو یہ ایک ٹانگ سے نہیں چل سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیے، انہوں نے اپنی کوئی چیز اپنے مقصد کے راستے میں آگے بڑھنے سے رکاوٹ نہیں بنائی. ہم تو اتنا ہی بہت ہے کہ ہم مصروف بہت ہیں، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ ہم بس اور جو کر رہے ہیں کام تو اب اور کیا کریں، سوچنے کی بات ہے نا. اور اگر ہم کچھ کرنے بھی لگ جائیں تو لوگ ہماری تعریفیں کر کے یا پھر ہم پہ رحم کھا کھا کے ہمیں اتنا اپنی نظروں میں ہی کر دیتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں، شاید میں نے ہی کوئی اپنے اوپر کوئی ایکسٹرا چیز لے لی ہے، لوگ تو نہیں کرتے، لوگ تو ایک نہیں کرتے، میں تو دو تین کر رہی ہوں. تو آئیے اس ساری چیز کو سمجھتے ہوئے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایمان کی وہ حرارت دے کہ جو ہمیں بڑھتے بڑھتے ایسا اللہ کے رستوں میں بڑھنے والا بنا دے کہ کوئی بھی رستے کی رکاوٹ ہمیں محسوس بھی نہ ہو. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اگر آپ کے اس بک ہے تو آپ کھول سکتے ہیں، اور پیج نمبر 101 ہے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، ایسا عظیم صحابی جس نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عزم کیا. جی، پہلی بات یہ کہ میں نے لفظ بولا عمر، عین میم را عمر ہوتا ہے، اور اگر لفظ عمر کے بعد واو آ جائے جیسے کہ یہاں آ رہا ہے تو وہ عمر بن جاتا ہے. بچپنے میں ایک سیریز چلتی تھی عمر و ایار کی کہانیاں، ساری زندگی ان کو عمرو سمجھ کے دیکھتے پڑھتے رہے. جب عربی سیکھی تو پتہ چلا وہ عمرو نہیں تھے، وہ عمر ایار تھے. ٹھیک ہے، تو لفظ صحیح بولیے، کل آپ آگے بڑھائیں بتائیں تو صحیح بولیے گا. عمر بن جموح. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو زمانۂ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا. آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی، اور آج آپ اسلام کی بجائے قرآن سے پہلے کہہ لیجئے، ہدایت سے پہلے کہہ لیجئے، لوگوں میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جو کہ ان کو نیکیاں کرنے یا اچھے کام کرنے میں مائل کرتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب اسلام آ جاتا ہے یا آج کے دور میں دین اور قرآن آ جاتا ہے تو صرف ان خوبیوں کا اور ان کاموں کا رخ بدل جاتا ہے. تو اچھی چیز کی خیر کرنی چاہیے. زمانۂ جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے خصوصی بت ہوتا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تاکہ صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے بت کا نام منات تھا. اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا، گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اسے اعلیٰ قسم کے عطریات لگائے جاتے، یعنی خوشبوئیں. آج بھی اکثر آپ ایسی جگہوں پہ جائیں تو خوشبوئیں اور اگربتیاں اور کچھ اس قسم کی چیزوں کی آپ کو خوشبو آئے گی. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی، 60 ایئرس. ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہوگا اس عمر کا بھی. جبکہ ایمان کی کرنیں یکے بعد دیگرے یثرب کے ہر گھر میں ضیا پاشیاں کرنے لگیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مدینہ میں پہنچ گئیں، और यसरब यहाँ मदीने का दूसरा नाम है या पुराना नाम कह लीजिए। सबसे पहले मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हो की अनथक कोशिश और तबलीग से हज़रत अमर बिन जमूख रज़ी अल्लाहु अन्हो के तीनों बेटे जिनका नाम मुआविस, मुआस और खल्लात रज़ी अल्लाहु अन्हुम था और इनके मुखलिस दोस्त हज़रत मुआस बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हो हलका इस्लाम में दाखिल हो गए। अपने बेटों से मुतासिर होकर इनकी वालिदाए माजिदा हिंद भी मुसलमान हो गई, लेकिन हज़रत अमर बिन जमूख रज़ी अल्लाह अन्हो को इस बात का इल्म ना हो सका कि इनके तमाम अफराद खाना मुसलमान हो गए हैं। हज़रत अमर बिन जमूख की अहलिया हिंद ने सोचा कि इस वक्त अहले यसरब की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। सरदारा ने कुरैश में से इनके खाविंद और दीगर चंद अफराद के अलावा सभी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। बीवी के दिल में बड़ी शिद्दत से यह एहसास पाया जाता था कि कहीं इसका खावन हालत कुफर ही में न मर जाए। इधर हज़रत अमर बिन जमूख रज़ी अल्लाह अन्हो को अंदेशा था कि कहीं इनके बेटे अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो की पैरवी ही इख्तियार न कर लें, जिन्होंने थोड़ी ही मुद्दत में बहुत से अफराद को अपने आबाई दीन से मुनहरिफ करके यानी हटा के दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदाई बना दिया था। आप देख रहे हैं कि मुसलमान होने को वो बेदीन होना समझ रहे हैं। इन्होंने अपनी बीवी से कहा, हिंद खबरदार ख्याल रखना कि कहीं तेरे बेटे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु के चुंगल में ना फंस जाएं। फिर यूं कहा कि हमें इस शख्स के मुतल्लिक कुछ सोचना ही पड़ेगा। बीवी ने अर्ज़ की, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या आप अपने बेटे मुआस रज़ी अल्लाहु अन्हु से वो बात सुनना पसंद करेंगे जो वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से बयान करता है? उन्होंने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि अमास रजी अल्लाह अन्हो अपने दीन से मुनहरिफ हो चुका है और मुझे इसका इल्म भी ना हो सका। इस नेक खातून ने जब अपने खाविन के तेवर देखे यानी देखा कि गुस्से में है, तो फौरन बोली, नहीं, बेटा तो सिर्फ मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हो की किसी एक मजलिस में शरीक हुआ था और इस मजलिस में बातें हुई वो इसने जुबानी याद कर ली। तो इसने कहा, अच्छा बेटे को मेरे पास लाओ। बेटा जब सामने आया तो इसे कहने लगे, मुझे भी वो कुछ सुनाओ जो तुम इस मजलिस में सुनकर आए हो। तो बेटे ने सूरत फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। अब सोच लीजिए कि उनको अरबी समझ आती थी, हम तो ऐसे ही पढ़ लेना, लेकिन उनके दिलों पे असर तो होता ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए यानी जिन पर इताब यानी डांट नहीं हुई, जो भटके हुए नहीं हैं, आमीन। सुनकर कहने लगी, तो बहुत उम्दा कलाम है, क्या इसकी हर बात इसी तरह की होती है? हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अब्बा जान इससे भी उम्दा। इनकी बातों से मुतासिर होकर तो आपकी पूरी कौम इनके हाथ पे बैत कर चुकी है, क्या आप बैत नहीं करेंगे? बेटे की ये बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, मैं तो इतना बड़ा इकदाम अपने माबूद मनात से मशवरा लिए बगैर नहीं कर सकता, देखता हूँ कि वो मुझे इस सिलसिले में क्या हुक्म देता है। आप भी देखिए, इंशाल्लाह एंड पे इस पे करेंगे डिस्कशन कि कैसे शिर्क बंदे की मत मारता है। और याद रखिए कि मन्नात एक फीमेल देवी थी, अल्लाह ताला के नाम अल मन्नान की तानीस, और मुशरिक कल्चर में अमूमन देवियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फीमेल ही हुआ करती हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपने लिए ये चीज़ बना रखी थी और इससे वो मशवरे करते थे। खैर देखते हैं आगे होता क्या है। कहा कि मैं तो उससे मशवरा लूंगा। अब देखिए, जब अल्लाह किसी की हिदायत का इरादा फरमा लेता है ना, तो वही बात है कि मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू, जब अल्लाह किसी को हिदायत दे दे तो फिर कोई उसको भटका सकता ही नहीं है। इधर भी कुछ ऐसा ही मामला है। बाप ने कहा, अब्बा जान ये मुमकिन नहीं कि मनात आपसे कोई बात करे, ये तो एक लकड़ी का बना हुआ बुत है। जिसमें ना सुनने की सलाहियत है और ना ही जवाब देने की। बाप गुस्से से बोला, मैंने तुझे एक दफा कह दिया है कि मैं हरगिज इस वक्त तक कोई फैसला नहीं करूंगा जब तक मनात से मशवरा ना कर लूं। फिर हजरत अमर बिन जमूख उठकर मनात की तरफ गए। ये इनका मामूल था कि जब कभी अपने माबूद मनात से कोई बात करना होती तो इसके पीछे ओट में एक बुढ़िया औरत को खड़ा कर देते। इस सिलसिले में इनका ये ख्याल था कि बुढ़िया मेरे हर सवाल का वही जवाब देती है जो मनात की तरफ से इसके जहन में इल्का किया जाता है। फिर वो मनात के सामने अपनी एक टांग के बल सीधे खड़े हो गए, क्योंकि इनकी दूसरी टांग लकड़ी की थी। पहले तो उन्होंने मनात की बहुत तारीफ की, फिर ये अर्ज पेश की, ऐ मनात, बिला शुबा तुझे इस बात का इल्म है कि ये मुबल्लिग यानी मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हो जो मक्का से हमारी इस वादी में वारिद हुआ है, ये तेरे अलावा और किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। ये यहाँ सिर्फ इसलिए आया है कि हमें तेरी इबादत से रोक दे। मुझे ये बात मुनासिब मालूम नहीं होती कि यूं ही इसके हाथ पर बैत कर लूं, हालांकि मैंने इसकी बहुत उम्दा बातें सुनी हैं। आज मैं इसीलिए आपसे मशवरा लेने आया हूँ। अजराहे करम मेरी रहनुमाई फरमाएं, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन मनात की तरफ से कोई जवाब ना आया। ये सूरत हाल देखकर बेहद अफसरदा हुए और कहा, मेरे प्यारे मनात, शायद आप नाराज हो गए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपको नागवार गुजरे। आप नाराज ना हो, मैं चंद दिन तक आपके पास आऊँगा ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। लग रहा है ना कि दीवारों से बातें करना, पत्थरों से बातें करना ऐसे ही है। हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह अन्हो के तीनों बेटे ये जानते थे कि इनके वालिद का अपने माबूद मनात के साथ बड़ा गहरा कल्बी ताल्लुक है। ये ताल्लुक के खातिर भला क्यों ना हो, एक तवील अरसे से मनात की पूजा पाठ इसके रगो रेशे में रच बस चुकी थी। लेकिन इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बाप के दिल में मनात की कदर व मंजिलत में चंदा यानी थोड़ी सी कमी वाक़ हो चुकी है। लेकिन इनकी ये कोशिश थी कि मनात की मोहब्बत इनके दिल से बिल्कुल निकाल दें, तभी वो ईमान लाने पर या ईमान कबूल करने के लिए आमादा होंगे। एक दफ़ा हजरत अमर बिन जमूह के तीनों बेटे अपने साथी मास बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो के साथ रात की तारीकी में मनात के पास आए। उन्होंने इसे उठाया और ले जाकर इसको एक गड्ढे में फेंक दिया जिसमें बनू सलमा गंदगी फेंका करते थे। ये कार्रवाई करने के बाद चुपके से वो घर लौट आए। किसी को भी इस वाक्य का कोई इल्म न हो सका। जब सुबह के वक्त जनाब अमर बिन जमूह रजी अल्लाह अन्हो अपने माबूद को सलाम करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि बुत तो वहां से गायब है। कहने लगे, सद अफसोस यानी 100 दफा अफसोस, इस रात हमारे माबूद को किसी ने गायब कर दिया। अहले खाना में किसी ने भी कोई जवाब न दिया तो उन्होंने अपने घर के अंदर और बाहर हर जगह देखा। गुस्से से पेचो ताप खाते हुए तलाश करते करते इस घड़े तक जा पहुंचे जिसमें लोग गंदगी फेंकते थे। क्या देखते हैं कि मनात सर के बल इस घड़े में पड़ा हुआ है। इसे बाहर निकाला, धोया, साफ किया, इसे खुशबू लगाई और वहां से उठाकर दोबारा अपने घर ले जाकर इसकी जगह पर खड़ा कर दिया और इससे मुखातिब होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस शख्स का इल्म हो जाता जिसने तेरे साथ ये सलूक किया है तो इसे आज बहुत जलील और रुसवा करता। जब दूसरी रात हुई तो बेटे बुत को चुपके से उठाकर इसी गड्ढे में फिर फेंका है जिसमें इसे पहली रात फेंका था। बाप ने सुबह के वक्त देखा कि इसका माबूद मनात फिर गायब है। बहुत तलाशे बिसियार के बाद इसे फिर इसी गड्ढे में मुंह के बल पड़ा हुआ मिला। वहां से इसे बाहर निकाला, धोया, साफ किया और इसे उठाकर घर ले आया और दोबारा इसकी जगह पर ला खड़ा कर दिया। तीनों बेटे रोजाना मनात के साथ यही सलूक करते रहे। बाप इस सूरत हाल से बेहद परेशान हुआ। एक दिन इसने ऐसे किया कि अपनी तलवार मनात के गले में लटका दी और कहने लगा, ऐ मेरे मनात, मुझे तो इल्म नहीं कि तेरे साथ ये सलूक कौन कर रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो खुद अपना दिफा कर लो, ये तलवार तेरे पास मौजूद है। ये कहा और खुद अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। जब पेटों को यकीन हो गया कि इनका बाप गहरी नींद सो गया है तो वह दबे पांव मनात के पास आए, इसकी गर्दन से तलवार उतारी और इसे चुपके से उठाकर घर से बाहर निकल गए। उन्होंने इसके साथ एक मरा हुआ कुत्ता भी बांध दिया और बनू सलमा के इस कुएं में फेंक आए जिसमें गंदा पानी जमा होता था। बाप जब नींद से बेदार हुआ देखा कि मनात फिर गायब है। तलाश करते हुए वो कुएं तक पहुंचा। इसमें देखा कि मनात मुंह के बल इसमें पड़ा हुआ है और एक मुर्दा कुत्ता इसके साथ बंधा हुआ है और तलवार इससे छीन ली गई है। ये मंजर देख कर इसके दिल में नफरत पैदा हो गई और इस दफा इसे वहीं रहने दिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर तू मुश्किल कुशा होता तो तू और कुत्ता एक साथ कुएं में ना पड़े होते। थोड़ी ही देर बाद अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। कितनी ही सीखने की बातें हैं, कितना कुछ ऐसे एक छोटे से आर्टिकल में जो अभी तक पढ़ा। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए हिदायत का फैसला किया है और जो इसमें संजीदा होता है ना, तो अल्लाह ताला उसको गुमराहियों में रहने नहीं देता। चंद बातें हम इस पूरे सिलसिले पे अमल के नुक्ता की सूरत में नोट करते हैं। पहली बात है कि दौरे जाहिलियत में भी इंसान दोस्त थे, फैयाज थे। इनकी कोई ऐसी नेकी ज़रूर काम आई कि अल्लाह ने इनको ईमान दिया। बाद सफा लोग सवाल करते हैं, यानी अहले बातिल या इस्लाम से पहले की ज़िंदगी में जो लोग अच्छे काम करते हैं तो उनका क्या होगा, क्या उनको उन अच्छे कामों का बदला मिलेगा? क्योंकि अगर इंजाम बखैर ना हुआ नेकियां तो ज़ाया हो जाती हैं। तो उसका जवाब लिखिएगा। किसी को भी बातिल अकीदे के साथ या इस्लाम से बाहर रहते हुए कोई भी अच्छा काम करता देखें, चाहे वो सिला रहमी हो, इंसाफ हो, हकूक इंसानियत हो और कुछ भी, अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको एक तो दुनिया में कोई खैर दे देता है ताकि उसका हिसाब इधर ही चुका दे। अल्लाह रखता किसी का नहीं है, ये याद रखिए। और दूसरी बात है, कैसे बहुत सारे लोगों को अल्लाह दुनिया में हिदायत भी दे देता है, यानी अगर उनमें ये खूबी ना होती तो उनको हिदायत ना मिलती। दावत तो बहुत सारों को मिलती है ना हिदायत की, लेकिन कबूल थोड़े ही करते हैं। तो लिहाजा मिसाल है कि एक गैर मुस्लिम है और वो बहुत पाक साफ ज़िंदगी गुजारता है, दूसरा भी गैर मुस्लिम है लेकिन जिना में डूबा हुआ है। एक वह जिसने कभी शराब का घूंट नहीं भरा, दूसरा जो है कि शराबी है। तो दोनों में यही फ़र्क है कि उसकी वो नेकी जो उसने अल्लाह को ना मानने या अल्लाह के साथ शरीक बनाने के बावजूद की, या तो उसकी कोई बीमारी टाल देंगी या उसको दुनिया का कोई दुख दूर उससे कर देंगी और या फिर उसको किसी अच्छे रास्ते में ले जाएंगे। दूसरी बात देखिए कि जो इसमें हमने देखी कि सरदारा ने अरब का रिवाज किया, हर सरदार के लिए खसूसी बुत होता था और उसको वो अपने घर में रखता और उससे बरकत हासिल करता। ये क्या बात है, आप देखिए कि ये सब कुछ मिथ है। आप जो सोचते हैं ना आप वैसे ही समझते हैं। सरदार अमूमन कौमों के मामलों को सुलझाने वाले होते हैं। सरदार जो होते हैं उनको अल्लाह ताला दूसरे लोगों से ज़्यादा अकल समझ देता है। लेकिन जो बाप दादा की रिवायात होती है ना, वो जिस तरह से चल रही होती है ना, वो चलते चलते एक अकीदे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कि बस दफ़ा बड़े बड़े लोग भी ऐसे होते हैं। मसा आज भी देखिए मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान, कुछ मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान भी पीरी मुरीदी और शिर्क और बातिल परस्ती में इस हद तक मुलव्वस है कि बुत को तो नहीं सजदे करते, बुत से तो नहीं मांगते जाके, लेकिन फौतशुदा लोगों से, नेक लोगों से, बुजुर्गों से, अल्लाह के वलियों से जाकर न जाने क्या कुछ मांग रहे होते हैं। तो क्या पता चला कि ज़रूरी तो नहीं है कि अल्लाह किसी को दुनिया की कोई बहुत बड़ी खैर और नेमत दे तो वो बहुत ही समझदार हो। नहीं, नेमतें हिदायत के बाद ही सारी नेमतें फ़ायदा देंगी वरना नहीं। फिर इसके बाद एक और चीज़, लकड़ी से तैयार करदा बुत जिसकी हिफाजत ये करते, उसको इत्रियात लगाते और उम्मीद क्या करते कि ये हमारी हिफाजत करेगा, जबकि अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह को तो थकन ही नहीं होती ज़मीन और आसमान की हिफाजत करके, तो वल हाफिज अल हफीज़ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। फिर इसके बाद आप देखिए कि अमर बिन जमूह की उम्र 60 साल की हो चुकी है। 60 साल एक पुराना दरख्त होता है जिसकी जड़ें बड़ी दूर तक जा चुकी होती हैं, लेकिन जब अल्लाह किसी के सीने को खोलता है ना, तो वो चाहे कुफर की ज़मीन में गढ़ चुका हो, अल्लाह उसको वहाँ से निकाल लेता है। फिर इसके अंदर एक बहुत ही जज्बाती और अकीक नुक्ता है, और वो क्या है, पहले मुबल्लिग़ इस्लाम मुसअब बिन उमर। आप में से अक्सर लोग जानते हैं और इसी बुक में हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। आप सुनिएगा खोल कर कहानी। अल्लाह के नबी अभी मक्का में थे और मदीना में आपका पैगाम इन लोगों के ज़रिए गया। आपने सीरत की किताबों में पढ़ा होगा कि 2 साल तक बैते अकबा होती रही। एक बैते अकबा उला थी और एक सानी थी। उसके ज़रिए कुछ पहले दफ़ा में 6 लोग, फिर 12 लोग, फिर 80 के करीब कुछ लोग आए। जब हज के मौके पे आते तो एक घाटी में छुप के अल्लाह के नबी से इंस्ट्रक्शंस लेते। कोई उनके अजर को पा सकता? जब मैं ये सीरत का हिस्सा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे आज की ज़ुबान में ऐसे लगता है कि आजकल ऑडियो विजुअल का दौर है, कि अभी कोई मुबल्लिग खुद तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी ऑडियोज कुछ लोगों के जरिए पहुंच जाती हैं। आज की जुबान में ऑडियो, वीडियो, सीडीज, टेप, कैसेट्स की बजाय लिंक्स, और उनके कह लीजिए कि यूट्यूब्स और व्हाट्सएप पे आए हुए लेक्चर्स, अल्लाह कुछ लोगों को चुन लेता है। और याद रखिए, नई जमीन पे बीज बनी है, फिर आपकी ज्यादा कदर होगी। अपने लिए टारगेट बनाए मैंने, वहां इस पैगाम को लेके जाना है। एक छोटी सी, वो कहते हैं ना, नदी नाली में से एक छोटी सी ब्रांच खींच के मैंने किसी कोने में ले जानी है, ताकि वहां मेरा ही अजर हो। और कोई कहे कि सबसे पहले यहाँ इन्होंने दीन का काम शुरू किया था, फिर अल्लाह तो देने से नहीं थकता। फिर आप देखिए कि इसमें एक और अमल का नुक्ता की नहीं, कि अपने 3 बेटे और उनके दोस्त मास बिन जबल मुसलमान हो गए, तो यूथ और यंगस्टर्स ज्यादा जल्दी ईमान कबूल करते हैं, शर्त यह कि उन तक टू दी पॉइंट बात पहुंच जाए। बड़े लोग जरा टाइम लेते हैं। फिर देखिए, बीवी भी मुसलमान हो गई। आज भी यही रेवोल्यूशनरी दौर आएगा, फर्क कितना कि पहले लोग इस्लाम कबूल करते थे, अब कुरान कबूल करते हैं। कभी मर्द को नमाज भी नहीं मिलती और औरत कुरान पढ़ के और उससे आगे पहुंच चुकी होती है, और बच्चों को भी अपने साथ लगा चुकी होती है। तो इसमें औरतों का किरदार दिख रहा है आपको, इनकी बीवी के नाते से। ये वक्त अभी अपनी इस्लाह का और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने का होता है, जिस वक्त अमूमन हम बात छेड़कर झगड़े शुरू करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बीवी ने ये धड़का रखा दिल में कि मेरा शौहर कुफर पे ना मर जाए, ये हर उस बीवी को रखना चाहिए जिसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता, जिसका शौहर शिर्क में है, बिदत में है, जहालत में है। क्या पता किस वक्त, तो पूरी इतनी जिंदगी का साथ, इतने सालों का साथ, क्या कोई चाहेगा कि वो शख्स दुनिया से ऐसे ही चला जाए और वहां हमेशा की जुदाई हो जाए। फिर आप देखिए कि अमर बिन जेमूह का ये अंदेशा कि मेरे बेटे बाप दादा का दीन ना छोड़ दें और ये कल के बच्चे मुसअब बिन उमैर की बातों में ना आ जाए, तो वही हुआ। आज भी यही है, जो स्टेबल लोग होते हैं ना, जो बहुत रिवायत के पाबंद होते हैं, उनको अमूमन यही धड़के लगे होते हैं अपनी नस्लों के लिए, लेकिन वो बात जिसका डर हो ना, वो हो भी जाती है। फिर इसके बाद आप देखिए कि बीवी का बहुत ही हकीमाना अंदाज, एकदम जाके नहीं बात सामने रखी, लेकिन अंदाज आपने देखा कितने अच्छे तरीके से बेटों को जरिया बनाया कि बाप को तबलीग करें। और ये भी एक अंदाज अच्छा होता है कि बात डायरेक्ट सुनवा दी जाए, ताकि जो भी असर होना है वो बराह रास्त हो जाए। फिर उसके बाद आप देखिए कि बेटे ने जब बात की और सूरह फातिहा पढ़ी, यहाँ से तो लिख लीजिए, किसी नए बंदे को दीन से जोड़ना है ना, तो बेसिक से बात करें, सूरह फातिहा बेस्ट है। सूरह फातिहा की तफसीर सुना दें, सूरह फातिहा की बात कर दें, और उस सूरह फातिहा को वो समझ जाए जिसको अरबी आती है, तो उसके लिए तो और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं होगी। और ये देखिए कि अमर बिन जमू सिर्फ सूरह फातिहा सुनकर अपने दिल में ईमान पाते हैं। हम दिन में 17 से ज़्यादा बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सुबह से अभी तक कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, सोचिए हमारे दिलों पर असर क्यों नहीं होता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बेटा भी कितने प्यार से बाप को बात कहते हैं कि आप क्यों नहीं हो रहे जबकि सारे हो गए, तो ये पीयर प्रेशर डालना भी होता है। तो अगर ये कहा जाए कि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं, झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा मेजोरिटी को अथॉरिटी बनाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि मनात से मशवरा करना, ये भी एक दिल की तसल्ली है, और ये अच्छा हुआ कि उसने कर लिया, जवाब तो जो मिलना था कुछ भी ना मिला, लेकिन तसल्ली होगी। अगर बेटे मजबूर करते, ना 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 नहीं, शौक पूरा कर लेना चाहिए, कर लेने देना चाहिए। कोई कहता नहीं अभी नहीं, अभी चले ये नहीं वो कर लूँ, कभी कभी शर्तें लगाते हैं लोग ईमान के नाम पे, तो ठीक है लगा लीजिए, क्योंकि हिदायत उसको मिलनी है जिसने चाहनी है। फिर आप देखिए बहाने से तबलीग कि तो लकड़ी का बुत है, ये क्या आपको जवाब देगा, तो बाप को गुस्सा आया। तो याद रखिए, आज भी लोगों को गुस्सा आता है जब आप उनके खुदाओं को बुरा कहते हैं। वो बुत पत्थर का नहीं होता, उसके पीछे छुपी हुई एक रिवायत होती है, एक बचपन का साथ होता है, बचपन से एक नाम घर में चलता है। आज कई लोग अपने अपने दीनी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत स्टबन होते हैं, कहते हैं क्या करें जब से आंख खोली घर में यही नाम था, तो वो एक एफिलिएशन हो जाती है। बहरहाल, फिर आप देखिए कि मनात की तारीफ है, मनात का जवाब नहीं आना, उसने पता नहीं वो बुढ़िया किधर गई जो पीछे खड़ी की जाती थी। तो याद रखिए, अकीदा बहुत बड़ी नेमत है, सही अकीदा मांगिए अल्लाह से, अकीदा सही होगा तो अमल खुद बहुत सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर खुद से सोच लिए कि मनात नाराज हो गया, आज भी लोग ऐसे ही खुद से खुद सोच, बाबा जी नाराज हुए हैं, उनको जाके मनाएं, मुझे ख्वाब में आए थे, बड़े गुस्से में थे, घूर रहे थे, ये मेरे पे मुश्किलें आने लग गई, लगता फलां नाराज है, फलां नाराज है। और उसके बाद जो कुछ मनात का हुआ हशर, वो आपने देख ही लिया। आज भी बहुत सारी चीजें घरों में ऐसी पड़ी होती हैं जो सिर्फ हमारे लिए एक इबरत का सामान तो बन सकती हैं, हिदायत का सामान नहीं बनती, लेकिन अल्लाह ने दिल खोल दिया। इसे पता चलता है कि अमर दिल के सच्चे थे। ऐसा बंदा अगर कुफर, शिर्क, बिदत, क्या शराब में भी धुत हो ना, अल्लाह उसको ज़रूर हिदायत देता है, लेकिन बात यह कि हिकमत के साथ। अब आगे देखते हैं कि जब मुसलमान हुए तो क्या हुआ। हज़रत अमर बिन जमूख रज़ी अल्लाह अन्हो लज़्ज़त ईमानी से शाद काम हुए, लेकिन उन्होंने शिर्क की हालत में जो दिन गुजारे थे, इस पर इन्हें इंतहाई अफसोस था। ये भी नोट कीजिए, जब भी हिदायत मिलती है ना, तो बंदे को ये धड़का बहुत रहता है कि देर से क्यों मिली, हाय कभी पहले मिली होती, हाय कभी इससे पहले हो जाता, हाय ये हो गया वो हो गया, तो ये एक फितरी सी बात है। अब वो दीन इस्लाम की तरफ पूरे इखलास से मुतवज्जे हुए, अपनी जान माल और औलाद को अल्लाह ताला और इसके रसूल मकबूल अलैहि सलाम के लिए वक्फ कर दिया। ये है इलाज। जो वक्त गुनाहों में गुजरा, अब वो नेकियों में गुजारिए। जिस जिस्म को गुनाहों में मोटा किया, खिला पिला के उसको अब नेकियों में दुबला कीजिए, और हर वो कमी बेशी जो थी उसको अब नेकियों में बढ़ा दीजिए। सहाबा में बहुत सारों की ऐसी मिसालें। तो अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह जितने पीछे गाने सुने हैं ना, अब उतना कुरान सुना दे, जितनी फिल्में देखी हैं ना, अब उतनी हकीकत में कोई अच्छी चीज़ें करा दे, उतनी किताबें पढ़ा ले, फिक्शन में ज़िंदगी ज़ाया की, अपने एक एक माजी के गुनाह को याद कर करके रोया करें। थोड़े ही अरसे बाद गज़वा उहद वक़ूअ पज़ीर हुआ। हज़रत अमर बिन जमूह ने अपने तीनों बेटों को देखा कि वो दुश्मन से मुकाबला करने की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और सुबह शाम बहादुर शेरों की मानिंद आ जा रहे हैं, और वो जामे शहादत नोश करने और अल्लाह सुबहान तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर दम बेचैन है। पूछिए, हमारे भी बच्चे इस तरह के हैं? आपने अपने बेटों के जज्बा जिहाद से मुतासिर होकर खुद भी मैदान कारजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले दुश्मनों से नबर्द आजमा होने का आजम कर लिया, लेकिन बेटों ने अपने बाप को इस इरादे से रोका, क्योंकि एक तो वो उम्र रसीदा थे, फिर इस पर एक वो एक टांग से माजूर भी थे। बेटों ने अरज की, अब्बा जान, अल्लाह ताला की जानिब से आप माजूर हैं, आप ये तकलीफ ना उठाएं, अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको इस जिम्मेदारी से सबकदोश कर दिया, यानी आप एग्जेम्प्टेड हैं। बाप अपने बेटों की बातें सुनकर रंजीदा खातिर हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर होकर शिकवा करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे मुझे जिहाद में शरीक होने से रोक रहे हैं, और दलील ये देते हैं कि मैं लंगड़ा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं तो लंगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। तो क्या ये लंगड़ा शख्स टांगों वालों से अच्छा नहीं है, जो इन्हीं टांगों पे चल के गुनाह और हराम की तरफ चलते हैं? जिस रब ने ये टांगे दी, उसके रास्ते में जिनको क़याम की तौफीक नहीं है, इस्तकामत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ये शौक़ देखकर इनके बेटों से इरशाद फरमाया, इन्हें जिहाद में शरीक होने दो, शायद अल्लाह ताला इन्हें शहादत नसीब फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर बेटों ने खामोशी इख्तियार कर ली। देखिए, अल्लाह के नबी के मुंह से बात निकले और ये हो ना, ये मुमकिन नहीं, ये भी एक किस्म के इशारे ही होते थे। हम होते हाय शहीद हो जाएंगे, नहीं अब्बा, नहीं जाने देंगे आपको। बेटे खामोश हो गए, क्योंकि शहादत है मतलूब मकसूद है मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। जब जिहाद के लिए मैदान की तरफ निकलने का वक्त आया, तो हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह अन्हों ने अपनी बीवी को इस अंदाज से अलविदा कहा जैसा कि अब कभी वापस घर नहीं लौटेंगे। फिर क़िबला रुख होकर आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और ये दुआ की, इलाही मुझे शहादत नसीब करना और मुझे नाकाम बनाकर अपने अहले खाना की तरफ ना लौटाना। फिर वो अपने बेटों के जलू में उनके साथ मैदान जंग की तरफ चल पड़े। इनकी कौम बनू सलमा के बहुत से अफराद इस जंग में शरीक हुए। जब मैदान कारजार गर्म हुआ, तो मुजाहिदीन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मुख्तलिफ दस्तों में बट गए। हज़रत अमर बिन जमूह को देखा कि वो सबसे अगले दस्ते में चले जा रहे हैं, और अपनी एक टांग के सहारे चुकड़ियां भरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बच्चे नहीं हिप्स को नीचे रख के चलते हैं, यानी जिस तरह भी वो एक टांग पे चल सकते थे, और अपनी ज़बान मुबारक से ये कह रहे हैं, मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, मैं जन्नत का मतलाशी हूँ, यानी आई एम सीकर ऑफ जन्ना, मुझे शौक है जन्नत में जाने का, हमें है। और इनके पीछे इनका बेटा खल्लाद रजी अल्लाह अन्हो चला रहा था। ये बूढ़े मुजाहिद और इनका जवान बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसलसल दिफा करते रहे, यहाँ तक कि दोनों यके बदीगरे मैदाने जंग में जामे शहादत नोश फरमा गए। बाप भी गया, बेटा भी गया। कितनी तरजीहात मुख्तलिफ थी उनकी हमसे। जब जंग ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा की तरफ तशरीफ़ ले गए ताकि इनकी तदफीन का बंदोबस्त किया जाए। आपने इरशाद फरमाया, शुहदाए इस्लाम को खून और ज़ख्मों की हालत में ही रहने दो, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हजूर में इनकी शहादत की गवाही दूंगा। फिर इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स अल्लाह ताला की राह में ज़ख्मी कर दिया जाता है तो इसे क़यामत के दिन इस हालत में उठाया जाएगा, किसके ज़ख्मों से ज़ाफ़रानी रंग का यानी जर्द रंग का खून बह रहा होगा और इससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। बड़ी नायाब खुशबू है कस्तूरी। फिर इरशाद फरमाया, अमर बिन जमूह और अब्दुल्ला बिन अमर उनके बेटे को एक ही कब्र में दफन कर दो। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मोहब्बत करते थे बाप बेटा, लेकिन मोहब्बत अल्लाह के लिए थी। हज़रत अमर बिन जमूह और उनके साथी उहद के शुहदा से अल्लाह ताला राज़ी हो गया और इनकी कब्रों को अपनी रहमत से मुनव्वर कर दिया। तो ये थे हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिलों में ये शौक़ लगा दे, ये दे दे हमें भी जज्बे। वो कहते हैं ना कि ये वो जज्बे हैं जब उम्मत में आ जाते हैं तो मैदाने जंग हो या मैदाने अमल हो या मस्जिदों की नमाजें हों, किसी चीज़ से लोग पीछे नहीं होते। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।